वेद, मानवी ने धीमे से पुकारा। मानवी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। रात काफी हो चुकी थी। कमरे में बस नाइट लैम्प की हल्की पीली रोशनी थी जो दोनों के चेहरों पर सुकून बिखेर रही थी। वेद उससे अपनी छोटी छोटी शरारत से परेशान कर रहा था। हाँ बोलो, वेद ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। मुझे 2 मिनट के लिए उठना है, मानवी ने हल्की सी कोशिश करते हुए कहा। किस लिए उठना, ऐसे ही सो जाओ, वेद ने मानवी की गोरी पीठ को सहलाते हुए कहा। वेद जानता था कि वो मानवी को अपनी शरारतों से परेशान कर रहा है, फिर भी अनजान बन रहा। प्लीज मुझे उठकर कपड़े पहनने दो, मानवी ने कहा। इतनी रात हो गई है, अब अगर सोना ही है तो कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, ऐसे ही सो जाओ मेरी बाहों में, कहते हुए उसने मानवी को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। मानवी हंस पड़ी। अगर ऐसे ही रहेंगे ना तो मुझे पता है आप मुझे सोने ही नहीं दोगे। वेद उसे कब कब से लगातार प्यार कर रहा था। तुम मेरी बीवी हो, वेदांत ने आंखें बंद करते हुए आधी नींद और आधे प्यार में कहा। हक है मेरा तुझ पर, अच्छे से जानती हूँ, मानवी ने उसका माथा चूम लिया। वेदांत ने अपना चेहरा मानवी की गर्दन में छुपा लिया। पता है, उसने धीमे से कहा, माँ ने क्या डिमांड की है? पता है, वेदांत ने मुस्कुराकर कहा। असल में आज वेदिका ने कहा था कि अवनी को छोटा भाई बहन चाहिए, वेद उसी की बात कर रहा था। मगर पूरी रात हमें सिर्फ यही तो नहीं करना, सोना भी चाहिए, आपको सुबह ऑफिस जाना है। मानवी उसकी हरकतें देख रही थी, वो किसी तरह से नहीं लग रहा था कि अभी सोएगा। वेदांत ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया, नाइट लैम्प की रोशनी में उसका चेहरा देखता रहा। क्या करूं यार, वो धीमे से बोला, जितना तुमसे प्यार करता हूं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। वो उसकी गर्दन पर प्यार जताता हुआ नीचे उसकी क्लीवेज पर आ गया था। मानवी ने भी इसका साथ दिया और वेद की पीठ पर मानवी के हाथ कहने लगे थे। कमरे में फिर खामोशी उतर आई, ऐसी खामोशी जिसमें प्यार पूरी तरह जाग रहा था। वेद की इन हरकतों की वो पूरी तरह से आदी हो चुकी थी। उसे भी वेद की नज़दीकी बहुत अच्छी लगती थी। वो उसके केवल शरीर के अंदर नहीं उतरता था बल्कि उसकी रूह में उतर जाता था। वेद ने उसे बाहों में समेटा हुआ था जैसे दुनिया से छुपा रहा हो। तुम्हें पता है, उसने बहुत धीमे से कहा, तुम मेरे लिए क्या हो? मानवी ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। पता है, इसीलिए तो इतनी शांति मिलती है। वेद ने उसके माथे को चूमा, फिर आंखों को, फिर गालों को। हर स्पर्श में जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था। मानवी की सांसें धीरे धीरे बदलने लगी जैसे उसका मन भी उसके साथ साथ खुल रहा हो। उसने पहली बार अपनी आंखें बंद कर दी पूरी तरह। वेद ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया जैसे कोई कीमती चीज रखी जा रही हो। अगर कभी भी तुम्हें रुकना लगे, उसने उसके कान के पास कहा, बस बोल देना। मानवी ने उसकी गर्दन को थाम लिया। आज मुझे रुकना नहीं है, उसकी आवाज में भरोसा था। उस रात सिर्फ शरीर पास नहीं आए, डर, थकान, पुराने बोझ सब कहीं पीछे छूट गए। मानवी को लगा जैसे पहली बार वो पूरी तरह देखी गई, पूरी तरह स्वीकार की गई। जब सब शांत हुआ, वो वेद की बाहों में थी, सांसें गहरी, मन हल्का। आप? वेद ने पूछा। मानवी ने मुस्कुराकर उसकी छाती पर उंगली घुमाई। आप? मैं पूरी हूं, वेद ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। और मैं बहुत खुश। कमरे में फिर खामोशी उतर आई, लेकिन इस बार वो खामोशी तृप्ति से भरी हुई थी। सुबह की धूप दबे पांव कमरे में चली आई थी। पर्दों के बीच से छनकर आती रोशनी बिस्तर पर ऐसे फैल रही थी जैसे रात की सारी बातें अब धीरे धीरे उजाले में बदल रही हों। मानवी की आंख खुली, फिर उसने करवट बदली और वेद को देखा। वो अब भी सो रहा था, चेहरा शांत, माथे की शिकन गायब। मानवी ने पहली बार उसे इतना हल्का देखा, जैसे किसी बोझ से मुक्त। उसने बहुत धीरे से चादर अपने ऊपर खींची, मानो उस सुकून को जगाना चाहती हो जो रात भर उनके बीच ठहरा रहा था। उसका मन अजीब तरह से भरा हुआ था, ना कोई अधूरापन, ना कोई बेचैनी, सिर्फ शांति। वेद की सांसें उसके कंधे को छू रही थी। हर सांस के साथ मानवी को यही लग रहा था कि वो अब अकेली नहीं है, किसी भी मायने में। वेद की आंख खुली, उसने मानवी को देखा और मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग, उसकी आवाज में वही नरमी थी जो रात से चली आ रही थी। मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ थोड़ा और सिमट गई। आज तुम कुछ अलग लग रही हो, वेद ने कहा। क्योंकि आज मैं हल्की हूं, मानवी ने धीमे से कहा, जैसे कुछ अंदर से ठीक हो गया हो। वेद ने उसका माथा चूमा। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई मांग, बस साथ। कुछ देर बाद वे दोनों यूं ही लेटे रहे। छत को देखते हुए, धूप को बढ़ते हुए महसूस करते हुए। ये सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं थी, बल्कि उस एहसास जैसी थी जहां सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया हो। और मानवी जानती थी इमरान की फैमिली आज चंडीगढ़ के लिए निकलने वाली थी। जाने से पहले सभी लोग सर के घर खाने पर इन्वाइटेड थे। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था, माहौल हल्का और खुशनुमा था। इमरान और सर साथ साथ सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच एक सहज सी अपनापन भरी बातचीत चल रही थी, कभी किसी बात पर मुस्कान, कभी हल्की नोकझोंक। आसपास बैठे लोग भी उसी बातचीत में शामिल हो रहे थे। जोया और जुबेर सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। जोया की नजर बार बार इमरान और सर पर जा रही थी। वो उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को देख रही थी, उस कनेक्शन को महसूस कर रही थी जो बिना ज्यादा शब्दों के भी साफ छलक रहा था। लेकिन जोया को वही चीज खटक रही थी, उसे इमरान और सारा के बीच वो दूरी दिखाई नहीं दे रही थी। सारा आज कुछ ज्यादा ही खुली खुली लग रही थी और यही बात जोया को अच्छी नहीं लगी। कुछ पल देखने के बाद वो उठ खड़ी हुई। सारा, उसने सहज सी आवाज में कहा, मेरे साथ आओगी? तुम्हारा कुछ सामान मेरे कमरे में रखा है। सारा ने एक पल के लिए इमरान की तरफ देखा, फिर बिना कोई सवाल किए चुपचाप जोया के साथ चल दी। दोनों कमरे के अंदर आईं। जैसे ही वे अंदर पहुंची, जोया ने पीछे मुड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो किसी आने वाली बात की आहट देता है। सारा ने जोया की तरफ देखा, क्या हुआ? जोया ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में अब हल्के मजाक की जगह चिंता और सख्ती थी। हुआ बहुत कुछ है, उसने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, और अब मुझे तुमसे बात करनी है। जोया अपने कमरे में खड़ी सारा की बातें सोच रही थी। उसने धीरे से सारा की ओर देखा, मैं देख रही हूँ तुझमें और इमरान में सब ठीक है। वो तुम्हारे पास होने की कोशिश कर रहा है मगर तुम उसे इग्नोर कर रही हो, जोया ने कहा। सारा मुस्कुराई, ये बात सिर्फ तुमने ही नहीं घर के और लोगों ने भी महसूस की होगी। तो क्या समझता है वो मुझसे धोखे से शादी करेगा और मैं खुश हो जाऊंगी? जोया ने हकलाते हुए पूछा। सारा ने गंभीर होते हुए कहा, उसने तुमसे धोखे से शादी कैसे की? ये देखने तुम नहीं गई? उसने तो खुद को छुपाया नहीं था। अब जो उस पर गुस्सा हो गई, देख ये प्यार तुम्हारे हिस्से आया है, उसे मुट्ठी में रखना। कोई ऐसी बेवकूफी मत करना कि जिंदगी में तुम्हें पछताना पड़े। मैं मानती हूं तुम दोनों में प्रॉब्लम रही है, मगर वो कैसा है इतना और तुम समझ गई होगी, तो उसे अपना लो, जोया ने सारा का हाथ थामते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे चाचू मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब तुम्हें तुम्हारे चाचू का प्यार समझ आ सकता है, फिर इमरान का क्यों नहीं? जोया ने हल्की मुस्कान दी। बचपना मत दिखाना प्लीज, मगर ऐसे तो मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी, सारा ने धीरे से कहा। जोया ने पूछा, तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा है क्या? पता नहीं, सारा ने मन ही मन कहा। जब वो मेरे पास होता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब वो नहीं दिखता तो ऐसे लगता है कि कोई चीज गुम हो गई। जोया हंस पड़ी, तो प्यार हो गया मेरी लाडू रानी को, खुश हो तुम्हारे लिए। जो भी करो, लड़ाई करो झगड़ा कहो, मगर साथ रहना, उसे अपने पास रखना, समझी?
मैं तो उससे दूर हो भी नहीं सकती, सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्यों? जोया ने पूछा। क्योंकि प्यार करती हूं, जोया ने हंसते हुए कहा। सारा ने सिर हिलाया। देखो 3 दिन हो चुके हैं, रात को वो सोता तो सोफे पर है, सोते सोते रोज बेड पर आ जाता है। जोया ने सारा की ओर झुककर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, तो बेचारे को पहले ही बेड पर सोने दो ना, सोफे पर क्यों भेजती हो? और इतना लंबा चौड़ा गबरू सोफे पर कैसे आएगा? दोनों हंसी में डूब गई। कमरे में हल्की मुस्कान और प्यार की गर्माहट फैल गई।